सत्यवचन।
कार्यक्रम सत्यवचन में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, इन दिनों हम बाइबल की 12वीं पुस्तक दूसरा राजा का बाइबल अध्ययन कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि आपको इससे आत्मिक लाभ मिल रहा होगा। परमेश्वर की आशीषों को इन अध्ययनों से पाते जाइए।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज भी परमेश्वर के वचन में से सीखने एवं अध्ययन करने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, मैं आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, विशेष करके उन नए मित्रों का जो पहली बार आज हमारे इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम बाइबल की पुस्तक में से दूसरे राजाओं की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हमने देखा था राजा पेकह के राज्य में तिग्लित प्लेसर अश्शूरी ने इसराइल पर चढ़ाई करके इसराइल की सुरक्षा ढा दी थी और इसराइलियों को बंदी बनाकर अश्शूर को ले गया। होसे ने षड्यंत्र रचकर पेकह को घात किया और इसराइल का राजा बन बैठा। वह भी एक बुरा राजा था, परंतु अपने अग्रजों से कम था। उसके राज्यकाल में अश्शूर के राजा शल्मनेसेर ने चढ़ाई करके उसे अपने अधीन कर लिया और उससे कर लेने लगा। होशे ने मिस्र से मिलकर विद्रोह करना चाहा तो शल्मनेसेर ने उसे बंदी बना लिया तथा इसराइल को घेर लिया और होशे के 9वें वर्ष में इसराइलियों को बंदी बनाकर ले गया तथा विदेशियों को वहां बसा दिया। इस दंड का मुख्य कारण था इसराइल का ईश्वर त्याग और अशेरा देवता की पूजा। उन्होंने अपने संतान को भी आग में बलि चढ़ाया। उन्होंने यहोवा की एक भी आज्ञा नहीं मानी। अभी यहूदा बचा हुआ था जबकि वे भी इसराइल की सी चाल चल रहे थे। मित्रों, इस प्रकार की स्थितियों को हमने देखा था और आज हम उससे आगे अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और अध्याय 18 से देखेंगे, जिसका विषय है हिजकिया के युग में जागृति एवं परीक्षा। लेकिन इसके पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगे। हमारे दयालु और प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके हर एक आशीषों के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है। इस समय जब हम आपके वचन में से सीखना चाहते हैं, मनन चिंतन करना चाहते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें ताकि आज हम जो कुछ भी सीखते हैं प्रभु, हम उसे समझ सकें, अपने जीवन में ग्रहण कर सकें और सही रीति से अपने जीवन को चला सकें। हमारी प्रार्थना है उन भाई बहनों के लिए भी जो बीमार हैं, निराश हैं, दुखी हैं और किसी न किसी रूप से अपने जीवन से हताश हो चुके हैं। प्रभु, आप उन पर कृपा दृष्टि प्रदान करें। उनके हर एक जीवन की जरूरतों को, उनकी कमी और घटियों को आप जानते हैं। उनकी सहायता करें ताकि वे आपसे प्रेम कर सकें और आज के इस वचन के द्वारा अपने जीवन में आशीषों को प्राप्त करने पाएं। इस समय फिर से एक बार हम सबको आपके हाथ में सौंप देते हैं और बड़े धन्यवाद के साथ प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आइए आप मेरे साथ निकाल के रखिए दूसरे राजा की पुस्तक अध्याय 18, जिसमें से हम अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में हिजकिया राजा का इतिहास लिखा है। यह अध्याय इतना अधिक महत्वपूर्ण है कि इसका पुनरावरण दूसरे इतिहास की पुस्तक में भी है और यशाया की पुस्तक में भी हम इसे पाते हैं। प्रिय मित्रों, उत्तरी राज्य जो इसराइल है तो अश्शूरों द्वारा बंदी बनाकर ले जाया जा चुका है, परंतु परमेश्वर इसके तीन कारण को बताते हैं। इसराइल ने परमेश्वर की अवज्ञा की, उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया और उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाएं ना मानकर उसे चुनौती दी। इसी समय सौभाग्य से यहूदा में एक अच्छा राजा हुआ। अब क्योंकि उत्तरी राज्य इसराइल का अंत हो चुका है और हम केवल दक्षिणी राज्य यहूदा का इतिहास देखेंगे। मित्रों, परमेश्वर ने अभी तक यहूदा को बंधुआई में नहीं जाने दिया है क्योंकि वहां कुछ अच्छे राजा हुए हैं जो धार्मिक जागृति लेकर आए हैं। हम देखते हैं कि हिजकिया उन अच्छे राजाओं में से एक था और सच तो यह है कि वह दाऊद के बाद यहूदा का सबसे अच्छा राजा था। तो आइए हम पढ़ते हैं दूसरे राजाओं की पुस्तक 18 अध्याय उसके 1-3 पद में। एला के पुत्र इसराइल के राजा होशे के तीसरे वर्ष में यहूदा के राजा आहाज का पुत्र हिजकिया राजा हुआ। जब वह राज्य करने लगा तब 50 वर्ष का था और 29 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। और उसकी माता का नाम अभी था जो जकरिया की बेटी थी, जैसे उसके मूल पुरुष दाऊद ने किया था जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है वैसा ही उसने भी किया। मेरे मित्रों, हिजकिया का पिता आहाज एक महादुष्ट राजा था, परंतु उसका पुत्र बहुत ही धर्मी था। इस कारण हम विश्वास कर सकते हैं कि हिजकिया की माता एक अच्छी स्त्री और ईश्वर भक्त नारी थी। लिखा है कि उसका नाम अभी था। मेरे मित्रों, हम आगे देखेंगे यहूदा में धार्मिक सुधार। दूसरे राजाओं की पुस्तक 18 अध्याय उसके 4 पद में हम पढ़ते हैं, उसने ऊंचे स्थान गिरा दिए, लाठों को तोड़ दिया, अशेरा को काट डाला और पीतल का जो सांप मूसा ने बनाया था उसको उसने इस कारण चूर चूर कर दिया कि उन दिनों तक इसराइली उसके लिए धूप जलाते थे और उसने उसका नाम नहुशतान रखा। मेरे प्रियो, हिजकिया एक असाधारण मनुष्य था। वह अपनी प्रजा में धार्मिक जागृति लाया और देश से मूर्ति पूजा समाप्त करने का बहुत बड़ा कदम उठाया। मेरे मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं इस पद में मूसा द्वारा जंगल में स्थापित पीतल के सांप का उल्लेख है, जिसे हम गिनती की पुस्तक 21 अध्याय उसके 1-9 पद में पढ़ते हैं। मूसा ने जो सांप बनाकर ऊपर उठाया था उसका क्या हुआ? वह सुरक्षित रखा हुआ था और एक अद्भुत स्मारक के रूप में था। उसे मंदिर में रखा गया था। वहां रखे रखे एक दिन वह सांप इसराइल के लिए पूजा का कारण बन गया। उसे अपने पितरों की नाई विश्वास का प्रतीक मानने की अपेक्षा कि जंगल में परमेश्वर के दंड स्वरूप जब उन्हें सांप काटते थे, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर से विद्रोह किया था, उन्होंने उसकी पूजा आरंभ कर दी और वह ठोकर का कारण बन गया था। वे उसका अभिप्राय भी भूल बैठे थे। मित्रों, वह सर्प योहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसके 14-15 पद के अनुसार मसीह का प्रतीक था। जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। मेरे प्रियो, पीतल का सांप एक चिन्ह था जिसकी पूर्ति मसीह यीशु ने की, परंतु उन्होंने उसके उद्देश्य को बिगाड़कर परमेश्वर की अपेक्षा उस सांप की पूजा करनी आरंभ कर दी थी। मेरे मित्रों, एशिया माइनर की 7 कलिसियाओं के अध्ययन में मैंने देखा कि पिरगमुस नगर में सांप की पूजा होती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि इसराइल ने भी ऐसा ही किया। वे सर्प के लिए धूप जलाते थे और उसे नहुशतान कहते थे। हिजकिया ने उसे चूर चूर कर दिया और उससे छुटकारा पाना आवश्यक भी था। मेरे मित्रों, इसमें एक महान आत्मिक शिक्षा है। कुछ संस्थाएं हैं, कुछ सेवाएं हैं जिन्हें परमेश्वर ने पूर्व समय में काम में लिया है। दुर्भाग्य की बात तो यह है कि उन्होंने नहीं समझा कि परमेश्वर कब उनसे निवृत्त हो गया और उन्होंने भंग होना भी नहीं चाहा। मैं ऐसी कुछ संस्थाओं को जानता हूं जिनके बारे में मुझे पूरा विश्वास है कि परमेश्वर ने उन्हें उठाया और उन संस्थाओं ने महान उद्देश्य की पूर्ति की तथा समाप्त हो गए, परंतु वे चलती रही केवल इसलिए कि अपने कर्मियों को नौकरी देते रहें। वे नहुशतान बन गई, वे पीतल के सर्प बन गए। जो कमी परमेश्वर के उद्देश्यों के निमित्त सामर्थ्य रूप से काम में ली गई थी। मेरे प्रिय मित्रों, मैं ऐसी कलिसियाओं में भी रहा हूं जहां विश्वासी वर्षों से एक ही प्रकार की विधियों पर चल रहे हैं। वे कहते हैं हमेशा ऐसे ही किया जाता है। मित्रों, हो सकता है कि समय आ गया है कि विधियों में परिवर्तन लाया जाए। परमेश्वर के पास एक रूपता नहीं है। क्या आपको स्मरण आता है कि पौलुस ने आराधना के बाद किसी को सामने आने का निमंत्रण नहीं दिया? यह अभ्यास तो डीएल मूडी ने आरंभ किया था। आज अधिकांश प्रचारक इसकी आवश्यकता समझते हैं और मैंने तो इसे ठोकर का कारण बनते देखा है। परमेश्वर ने मूडी को प्रेरित किया कि वह ऐसा करे, परंतु उसने आपको ऐसा करने के लिए प्रेरित नहीं किया है। मेरे मित्रों, मैं कलीसिया की सेवकाई से जुड़ा हूँ और अनेक नव दीक्षितों ने रविवार आराधना में निमंत्रण स्वीकार किया, परंतु मेरे ठोस नव दीक्षित वे थे जो गुरुवार रात्रि के बाइबल अध्ययन में उद्धार पाए हुए थे। जब ऐसा कोई निमंत्रण नहीं दिया गया था कि परमेश्वर किसी को कुछ करने के लिए प्रेरित करता है, तो आवश्यक नहीं कि वह आपको भी वैसा ही करने के लिए प्रेरित करे। आप भी निस्संदेह सर्प के तुल्य किसी बात की उपासना कर सकते हैं और उसे नहुशतान कह सकते हैं। मित्रों, मैंने यहाँ पर इस विषय पर अधिक समय लगाया है क्योंकि मेरी समझ में यह महत्वपूर्ण है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हिजकिय्याह ने सर्प को चूर चूर कर दिया। मेरे विचार में गंभीरता धारण करने वाले प्रचारकों ने अवश्य ही हिजकिय्याह की आलोचना की होगी। अति संभव है कि उन्होंने कहा होगा, इसने हमारे अद्भुत अति उत्तम सांप को तोड़ दिया है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने उस सांप को तोड़ दिया। मेरे मित्रों, यदि आपके जीवन और कलीसिया में ऐसी कुछ छोटी छोटी मूर्तें हैं, तो मेरा सुझाव है कि आप उनसे छुटकारा पा लें। संभव है कि काम करने की आपकी निश्चित विधियां हैं जिन्हें आपको बदलना है। उन सांपों को तोड़ दें जो आपके जीवन में घर करके बैठे हुए हैं, जो परमेश्वर से आपको अलग करते हैं, अर्थात उन सांसारिक बातों में आप उलझे हुए हैं और परमेश्वर की ओर से आप हट गए हैं। तो आज हिजकिय्याह की तरह उन्हें आपको चूर चूर करने की आवश्यकता है। हम दूसरे राजाओं की पुस्तक 18 अध्याय उसके 5 और 6 पद में पढ़ते हैं, वह इसराइल के परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखता था और उसके बाद यहूदा के सब राजाओं में कोई उसके बराबर न हुआ और न उससे पहले भी ऐसा कोई ऊंचा था। और वह यहोवा से लिपटा रहा और उसके पीछे चलना न छोड़ा और जो आज्ञाएं यहोवा ने मूसा को दी थी उनका वह पालन करता रहा। मेरे मित्रों, यदि हिजकिय्याह से पूर्व या बाद में उसकी तुलना में कोई नहीं, तो हम कह सकते हैं कि वह असाधारण था। वह दाऊद से तुलना के योग्य था। वह एक महान राजा था जिसे परमेश्वर ने काम में लिया। यही कारण है कि उसकी जीवनी धर्मशास्त्र की 3 पुस्तकों में भी दी गई है, जिसे हम दूसरे राजाओं की पुस्तक, दूसरे इतिहास की पुस्तक और यशाया की पुस्तक में पढ़ते हैं। मित्रों, अब हम आगे देखेंगे यहूदा पर पहला आक्रमण। दूसरे राजाओं की पुस्तक 18 अध्याय उसके 7 से 10 पद में हम पढ़ते हैं, इसलिए यहोवा उसके संग रहा और जहां कहीं वह जाता था वहां उसका काम सफल होता था, और उसने अश्शूर के राजा से बलवा करके उसकी अधीनता छोड़ दी। उसने फलिस्तियों को गज्जा और उसके सिवानों तक, पहरुओं के गुमट और गढ़ वाले नगर तक मारा। राजा हिजकिय्याह के 4th वर्ष में, जो एला के पुत्र इसराइल के राजा होशे का 7वां वर्ष था, अश्शूर के राजा सलमनेसेर ने सोमरोन पर चढ़ाई करके उसे घेर लिया और 3 वर्ष के बीतने पर उन्होंने उसको ले लिया। इस प्रकार हिजकिय्याह के 6वें वर्ष में, जो इसराइल के राजा होशे का 9वां वर्ष था, सोमरोन ले लिया गया। मेरे मित्रों, हिजकिय्याह एक साहसी वीर था। उसके राज्य काल में यहूदा ने विद्रोह करके अश्शूर की अधीनता समाप्त की थी और फलिस्तियों को भी हराया था। हिजकिय्याह के 6वें वर्ष में सलमनेसेर ने इसराइल को हराकर बंदी बनाया। अब अश्शूरों और यहूदा के मध्य कांटे वाले तार भी नहीं थे। हिजकिय्याह संकट में था। आइए पढ़ें दूसरे राजाओं की पुस्तक 18 अध्याय के 11 और 12 पद में, तब अश्शूर का राजा इसराइल को बंधुआ करके अश्शूर में ले गया और हलह में और गोजान की नदी हाबोर के पास और मादियों के नगरों में उसे बसा दिया। इसका कारण यह था कि उन्होंने अपने परमेश्वर यहोवा की बात न मानी, वरन उसकी वाचा को तोड़ा और जितनी आज्ञाएं यहोवा के दास मूसा ने दी थी उनको टाल दिया और न उनको सुना और न उनके अनुसार किया। मेरे मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि यह इसराइल की बंधुआई का पुनरावलोकन है। दूसरे राजाओं की पुस्तक उसके 18 अध्याय के 13 और 14 पद में आगे पढ़ते हैं। हिजकिया राजा के 14वें वर्ष में अशूर के राजा सन्हेरीब ने यहूदा के सब गढ़ वाले नगरों पर चढ़ाई करके उनको ले लिया। तब यहूदा के राजा हिजकिया ने अशूर के राजा के पास लाकीश को कहला भेजा कि मुझसे अपराध हुआ, मेरे पास से लौट जा और जो भार तू मुझ पर डालेगा उसको मैं उठाऊंगा। तो अशूर के राजा ने यहूदा के राजा हिजकिया के लिए 300 किकार चांदी और 30 किकार सोना ठहरा दिया। मेरे मित्रों, हिजकिया ने अशूरों से विद्रोह किया परंतु सफल ना रहा, उसे परिणाम भुगतना होगा। हम दूसरे राजाओं की पुस्तक 18 अध्याय उसके 16 पद में पढ़ते हैं। उस समय हिजकिया ने यहोवा के मंदिर के किवाड़ों से और उन खंभों से भी जिन पर यहूदा के राजा हिजकिया ने सोना मढ़ा था, सोने को छीलकर अशूर के राजा को दे दिया। यहूदा पर दूसरा आक्रमण होता है सन्हेरीब की सेना द्वारा। हम पढ़ते हैं दूसरे राजाओं के पुस्तक 18 अध्याय के 17 पद में, तो भी अशूर के राजा ने तर्तान, रफसारिस और रफसाके को बड़ी सेना देकर लाकीश से यरूशलेम के पास हिजकिया राजा के विरुद्ध भेज दिया। सो वे यरूशलेम को गए और वहां पहुंचकर ऊपर के पोखरे की नाली के पास धोबियों के खेत की सड़क पर जाकर खड़े हुए। मित्रों, सन्हेरीब विशाल सेना लाकर यहूदा वासियों को डराता है। हम देखते हैं दूसरे राजाओं के पुस्तक 18 अध्याय उसके 18 और 19 पद में, और जब उन्होंने राजा को पुकारा तब हिल्कियाह का पुत्र एलियाकीम जो राजघराने के काम पर था और सेबना जो मंत्री था और असाप का पुत्र यवाह जो इतिहास का लिखने वाला था, ये तीनों उनके पास बाहर निकल गए। रफसाके ने उनसे कहा, हिजकिया से कहो कि महाराजा धीराज अर्थात अशूर का राजा यूं कहता है कि तू किस पर भरोसा करता है। मित्रों ध्यान दीजिए, रफसाके दो उदाहरण देकर यहूदावासी को धमकाता है। हम आगे पढ़ते हैं दूसरे राजाओं के पुस्तक 18 अध्याय उसके 20 और 21 पद में, तू जो कहता है कि मेरे यहाँ युद्ध के लिए युक्ति और पराक्रम है, सो तू केवल बात ही बात है। तू किस पर भरोसा रखता है कि तूने मुझसे बलवा किया है? सुन, तू तो उस कुचले हुए नरकट अर्थात मिस्र पर भरोसा रखता है, उस पर यदि कोई टेक लगाए तो वह उसके हाथ में चुभ कर छेदेगा। मिस्र का राजा फिरौन अपने सब भरोसा रखने वालों के लिए ऐसा ही है। मित्रों, यह जानकर कि हिजकिया मिस्र से सहायता की आशा में है, रफसाके मिस्र की निंदा करते हुए कहता है कि वह तो टूटा हुआ सरकंडा है जो उसी के हाथ में चुभ जाएगा। उसने कहा, तुम्हें मिस्र से कोई सहायता नहीं मिलेगी। अब हम आगे पढ़ते हैं और देखते हैं कि दूसरा सहारा भी तोड़ना वह चाहता है। दूसरे राजाओं के पुस्तक के 18 अध्याय और 22 पद में लिखा है, फिर यदि तुम मुझसे कहो कि हमारा भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है, तो क्या यह वही नहीं जिसके ऊंचे स्थानों और वेदियों को हिजकिया ने दूर करके यहूदा और यरूशलेम से कहा कि तुम इसी वेदी के सामने जो यरूशलेम में है दंडवत करना। मेरे मित्रों, हिजकिया ने जब ऊंचे स्थान गिराए तब सन्हेरीब ने सोचा कि वह जीवित और सच्चे यहोवा की वेदियां तोड़ रहा है। वह समझ नहीं पाया था कि हिजकिया अन्य जातियों की वेदियां और मूर्तियां तोड़ रहा था, और उसका यह काम तोड़फोड़ नहीं परमेश्वर का आज्ञा पालन था। मेरे मित्रों, यहूदियों को केवल यरूशलेम की ही एक वेदी पर यरूशलेम में यहोवा की उपासना करनी थी, और केवल लहू के बलिदान द्वारा वे यहोवा के निकट आ सकते थे। सन्हेरीब को ऐसा लगा कि हिजकिया ने सबसे अधिक आवश्यकता के समय यहोवा को त्याग दिया है। मेरे मित्रों, हम आगे पढ़ते हैं दूसरे राजाओं की पुस्तक 18 अध्याय उसके 23 पद में लिखा हुआ है, तो अब मेरे स्वामी अश्शूर के राजा के पास कुछ बंधक रख, तब मैं तुझे 2000 घोड़े दूंगा, क्या तू उन पर सवार चढ़ा सकेगा कि नहीं। ध्यान दीजिए कि यह यहूदा का अपमान और निंदा थी। हम दूसरे राजाओं की पुस्तक 18 अध्याय उसके 26 पद में पढ़ते हैं, तब हिल्किय्याह के पुत्र एलियाकीम और सेबना येवाह ने रबसाके से कहा, अपने दासों से आरामी भाषा में बातें कर, क्योंकि हम उसे समझते हैं और हमसे यहूदी भाषा में शहरपनाह पर बैठे हुए लोगों से सुनते बातें न कर। मेरे मित्रों, यहूदी शहरपनाह पर बैठे सुन रहे थे। यहूदा के कर्मचारियों ने कहा, आरामी में ही बोल, हम सब समझते हैं। बूढ़े रबसाके वास्तव में उन्हें हताहत करना चाहता था। तब हम आगे देखते हैं दूसरे राजाओं की पुस्तक 18 अध्याय उसके 28 और 29 पद में, तब रबसाके ने खड़े हो यहूदी भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, महाराजा धीराज अर्थात अशुर के राजा की बात सुनो। राजा यूं कहता है कि हिजकिय्याह तुमको भुलाने न पाए, क्योंकि वह तुम्हें मेरे हाथ से बचा न सकेगा। मित्रों ध्यान दीजिए, वह यहूदियों को भ्रमित करना चाहता था अर्थात डराना चाहता था, इसलिए वह जोर जोर से कहने लगा। तब हम आगे देखते हैं दूसरे राजाओं की पुस्तक 18 अध्याय उसके 30 से 32 पद में लिखा हुआ है, और वह तुमसे यह कहकर यहोवा पर भरोसा कराने न पाए कि यहोवा निश्चय हमको बचाएगा और यह नगर अशूर के राजा के वश में न पड़ेगा। हिजकिय्याह की मत सुनो, अशूर का राजा कहता है कि भेंट भेजकर मुझे प्रसन्न करो और मेरे पास निकल आओ, और प्रत्येक अपनी अपनी दाखलता और अंजीर के वृक्ष के फल खाता और अपने अपने कुंड का पानी पीता रहे। तब मैं आकर तुमको ऐसे देश में ले जाऊंगा जो तुम्हारे देश के समान अनाज और नए दाख मधु का देश, रोटी और दाख बारियों का देश, जलपायों और मधु का देश है। वहां तुम मरोगे नहीं, जीवित रहोगे। तो जब हिजकिय्याह यह कहकर तुमको बहकाए कि यहोवा हमको बचाएगा, तब उसकी न सुनना। मेरे मित्रों, वह यहूदियों को समर्पण के लिए बाध्य कर रहा था। वह उनसे प्रतिज्ञा कर रहा था कि यदि वे समर्पण कर दें तो जीवित रहेंगे। उसने कहा, मेरी शर्तें मान लो तो मैं तुम्हें शांति से रहने दूंगा और तुम अपने परिवारों के साथ आनंद लोगे। तब उसने कहा, यदि हम तुम्हें विस्थापित भी करेंगे तो तुम अपने ही देश के सदृश एक सुंदर स्थान में रहोगे। हम दूसरे राजाओं की पुस्तक 18 अध्याय उसके 33 से 35 पद में पढ़ते हैं, क्या और जातियों के देवताओं ने अपने अपने देश को अशूर के राजा के हाथ से कभी बचाया है? हमात और अरपाद के देवता कहाँ रहे? सफवैम, हेना और इवा के देवता कहाँ रहे? क्या उन्होंने शोमरोन को मेरे हाथ से बचाया है? देश देश के सब देवताओं में से ऐसा कौन है जिसने अपने देश को मेरे हाथ से बचाया हो? फिर क्या यहोवा यरूशलेम को मेरे हाथ से बचाएगा? मित्रों यहां पर ध्यान दीजिए कि रबसाको को तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसकी बातें यहूदियों को निरुत्तर कर रही है और वे दबाव में आ जाएंगे। यह सच है कि कोई भी देवता अपने लोगों को अशुरों से बचा नहीं पाया था, परंतु वह नहीं जानता था कि अन्य जातियों के देवता सच्चे परमेश्वर नहीं थे। सच्चा एवं जीवित परमेश्वर तो संपूर्ण पृथ्वी का परमेश्वर यहोवा है। मित्रों हम दूसरे राजाओं के पुस्तक 18 अध्याय उसके 36 और 37 पद में पढ़ते हैं, परंतु सब लोग चुप रहे और उसके उत्तर में एक बात भी न कही, क्योंकि राजा की ऐसी आज्ञा थी कि उसको उत्तर ना देना। तब हिल्किय्याह का पुत्र एलियाकीम जो राजघराने के काम पर था, और शेबना जो मंत्री था, और आसाप का पुत्र योआह जो इतिहास का लिखने वाला था, अपने वस्त्र फाड़े हुए हिजकिय्याह के पास जाकर रबसाके की बातें कह सुनाई। मेरे मित्रों, उसकी बातों का प्रभाव सुनने वालों पर कैसा हो रहा होगा, किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। मित्रों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह तो दाऊद और गोलियत वाली बात हो गई कि कोई व्यक्ति उन्हें ललकार रहा है, लेकिन उनके सामने बोलने वाला कोई नहीं था, क्योंकि वे जानते थे कि यह लड़ाई उनसे नहीं हो सकती है, केवल परमेश्वर ही इसे सफल कर सकता है। मेरे प्रिय मित्रों, कई बार मेरे और आपके जीवन में ऐसी कुछ बातें आती है जिसे हम जानते हैं कि यह हमारे द्वारा संभव नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि हम उस पर भरोसा रखें, उसके अनुसार अपने जीवन को यापन करें, ताकि परमेश्वर अपने कार्यों को कर सके। मेरे प्रिय, यदि आपके जीवन में भी ऐसे ही कोई चैलेंज की बातें हैं, चुनौती की बातें हैं, तो इस पर ध्यान दें कि आप परमेश्वर के निकट आ जाएं, उससे कहें कि प्रभु मैं गलत हूँ, प्रभु मैं आपको चाहता हूँ, आप मेरे जीवन में कार्य कीजिए। जब आप अपने गलतियों को मान लेते हैं, उससे क्षमा मांगते हैं, तो निश्चय जाने कि परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेगा और आपको विजयी बनाएगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं विश्वास करता हूँ कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने इस बात को जान लिया है कि हमारा जीवित परमेश्वर है जो सामर्थ्य है, जो विजयी दिला सकता है, आपके जीवन में शांति और आनंद दे सकता है। आप उस पर भरोसा रखें और इस वचन के अनुसार चलें। प्रभु आप सबकी सहायता करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
मेरा संगीत है तू, मेरा हर गीत है तू, मेरे प्यारे मसीहा, मेरा मन मीत है तू, मेरा संगीत है तू, मेरा संगीत।